नमस्कार भारत, आज है 6 दिसंबर दिन बुधवार और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के आज पूरे हुए 25 साल, क्या सोचती है 1992 के बाद पैदा हुई युवा पीढ़ी?
अभी मिशन 2017 था तो मंदिर का मसला, अभी 19 आने वाला है तो मंदिर का मसला, मेन बात चुनाव होती है, वो चुनाव के लिए हर जगह मंदिर के लिए राजनीति होती है।
सुनिएगा बाबरी मस्जिद टूटने के गवाह रहे फोटो पत्रकार प्रवीण जैन से, उस दिन क्या हुआ था?
मैं गया तो वहाँ पर देखा कि रिहर्सल हो रही है, जो 6 दिसंबर को जो होने वाला है रिहर्सल है।
डोपिंग मामले में 2018 के विंटर ओलंपिक में रूस के खेलने पर लगा प्रतिबंध, गुजरात में तूफान ओखी ने रोकी चुनाव प्रचार की रफ्तार। होंगी अन्य खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। विंटर ओलंपिक खेलों से प्रतिबंधित किए जाने पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एंटी डोपिंग तंत्र में व्यवस्थित छेड़छाड़ के आरोपों को सही पाया है। कमेटी ने रूस के उप प्रधानमंत्री और पूर्व खेल मंत्री विताली माटुको पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि रूस इस प्रतिबंध से उसी तरह बच निकलेगा जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ के विघटन और प्रतिबंधों के बावजूद वो बचा रहा। रूसी संसद के डिप्टी स्पीकर ने आईओसी के फैसले को अपमानजनक बताया है। व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रपति ट्रंप आज अपने संबोधन में ये स्पष्ट करेंगे कि अमरीकी दूतावास को यरूशलम ले जाने के प्रति उनका क्या रुख है। ट्रंप के इस संभावित फैसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहले से ही आलोचना होने लगी है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर ट्रंप के दृढ़ विचार हैं। इस कदम को लेकर अरब देशों के कई नेताओं ने चेतावनी दी है। सऊदी अरब किंग सलमान ने कहा है कि बिना अंतिम शांति समझौते के ऐसा करने से स्थितियां और बिगड़ेंगी। जॉर्डन के शाही परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य प्रिंस हसन बिन तलाल ने भी अमरीका को नसीहत दी है।
I would say that on the subject of the embassy per se, that this has been tried before, the Netherlands, Senegal.
दूतावास के मुद्दे पर मैं बस इतना कहूंगा कि ऐसा करने की पहले भी कोशिश हुई है, जैसे नीदरलैंड्स, सेनेगल। मैं समझता हूं कि अतीत में दसियों देशों ने अपने दूतावास वहां ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि इसका कोई राजनीतिक हल नहीं है तो वे पीछे हट गए। ये थे प्रिंस हसन बिन तलाल के शब्द। लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने आखिरकार औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। पिछले महीने सऊदी अरब से ही उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। लेबनान लौटने के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई। हरीरी ने कहा कि सरकार के सभी सदस्यों ने अरब देशों के संघर्षों से अलग रहने पर अपनी सहमति दी है। हरीरी ने अलग रहने की अपनी नीति को मानने की शर्त रखी थी। बैठक के बाद उन्होंने कैबिनेट का बयान पढ़ा। सरकार के सभी धड़ों ने अरब देशों के आंतरिक मामलों, सभी विवादों, संघर्षों और युद्धों से खुद को अलग रखने का फैसला किया है, ताकि अरब देशों के साथ लेबनान के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बचाए रखा जा सके। कैबिनेट ने इस्तीफे को अस्वीकार किया है। ये थे शाद हरीरी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगने से दसियों हजार लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से फैली है। एक मानसिक अस्पताल समेत कम से कम 150 इमारतें जलकर खाक हो गई हैं, जबकि 2.5 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है। बीबीसी रिपोर्टर ने बताया कि आसपास के इलाकों में राख की बारिश हो रही है और इतना अंधेरा छा गया है कि मुख्य राजमार्ग को बंद करना पड़ गया है। अमरीकी राष्ट्रपति के वकील ने कहा है कि रूस के साथ संबंध की जाँच के मामले में डॉयचे बैंक से ट्रंप या उनके परिवार के कोई रिकॉर्ड नहीं मांगे गए थे। इससे पहले ऐसी खबर आई थी कि अमेरिका के विशेष जांच अधिकारी रॉबर्ट म्यूलर ने कथित रूप से बैंक से इस बारे में सूचनाएं मांगी थीं। पनामा मामले की खबर देने वाली माल्टा की भ्रष्टाचार विरोधी पत्रकार डेफने कारुआना ग्लिट्स की हत्या के मामले में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अक्टूबर में उनकी कार में बम विस्फोट हो गया था, जिसमें वो मारी गई थीं। इस मामले में सोमवार को 10 गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें 3 व्यक्तियों ने अपने अपराध कबूल किए हैं। जापान ने उत्तर कोरिया के पुरुष और महिला फुटबॉल टीमों को टोक्यो आने की इजाजत दे दी है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। 6 दिसंबर 1992, यही वो दिन है जब अयोध्या में 16वीं सदी में बनी बाबरी मस्जिद को सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ताओं की एक भीड़ ने कथित तौर पर गिरा दिया था। आज उस घटना को 25 साल पूरे हो गए हैं। हजारों की संख्या में उस दिन अयोध्या में जमा हुए हिंदू कार्यकर्ताओं का मानना था कि जहां बाबरी मस्जिद खड़ी है वो दरअसल हिंदुओं के देवता भगवान राम का जन्म स्थान है, और राम के मंदिर को तोड़कर ही वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद महीनों तक भारत के विभिन्न इलाकों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा हुई थी, जिसमें एक अनुमान के अनुसार कम से कम 2000 लोग मारे गए थे। विवादित भूमि का विवाद अभी भी अदालत के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। कोर्ट से बाहर भी इस मामले को आम सहमति से सुलझाने की कोशिशें हो रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती इस मामले में अभियुक्त हैं। लेकिन इस घटना को लेकर आज 25 साल बाद अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, खासकर ऐसे युवा जिन्होंने विवादित स्थल पर न तो मंदिर देखा है और न ही मस्जिद, यानी जो 1992 के बाद पैदा हुए हैं और इस विवाद को सुनकर बड़े हुए हैं। अयोध्या में समीरात्मज मिश्र ने ऐसे ही कुछ युवाओं से बात की।
वैसे मैं अयोध्या में हूँ और अयोध्या क्या ये राम पैड़ी जगह है, और यहाँ मेरे साथ कुछ युवा हैं, छात्र हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये लोग अयोध्या को किस तरीके से देखते हैं। आप क्या नाम है आपका?
सुधांशु रंजन मिश्रा।
आप सुधांशु, जैसे देखते होंगे कि 6 दिसंबर की तारीख नज़दीक आती है तो यहाँ मीडिया का जमावड़ा, या अयोध्या में मंदिर मस्जिद को लेकर के इतना सब होता है, क्या वो युवा भी जिन्होंने न तो मंदिर मस्जिद देखा है, वो गिरी गई है, आप उसके बाद पैदा हुए हैं, और ना आपने मंदिर देखा है वहाँ भगवान राम जो है वो टाटपट्टे में, आप लोगों को क्या लगता है कि जितनी हलचल, जितनी राजनीति बाहर होती है उतनी अयोध्या में भी होती है या यहाँ नहीं होती?
नहीं, अयोध्या में तो ज़रूर होती है। अगर अयोध्या से ही मंदिर मस्जिद सब कुछ यहीं का मसला है तो यहाँ पे तो ज़रूर राजनीति होती है। बट बाहर वाले जो हैं, बाहर के जो बड़े बड़े राजनेता हैं, वो ज़्यादा राजनीति करते हैं, इस पर ये बनने नहीं देना चाहते, सिर्फ राजनीति करते हैं।
हमारे साथ एक और युवा है, देवेश। देवेश, आप बता रहे हैं कि आप 20 साल 21 साल के हैं, छात्र हैं आप भी, तो ये जो कह रहे हैं तो क्या आपको क्या लगता है?
नहीं जी, बात ये है कि यहाँ पर जो साधु संत लोग हैं ये भी राजनीति में आ गए हैं, और राजनीति चुनाव के माहौल में तो ज़्यादा ही राजनीति राम मंदिर को लेकर होती है। अभी मिशन 2017 था तो मंदिर का मसला, अभी 19 आने वाला है तो मंदिर का मसला, मेन बात चुनाव होती है, वो चुनाव के लिए हर जगह मंदिर के लिए राजनीति होती है कि मंदिर बनवाएंगे तो हम चुनाव जीतेंगे।
तो इसको क्यों इतना उलझाए रखते हैं लोग?
यहाँ पे जो नेता लोग हैं वो अपना अपना रोटियां सेकने के लिए चक्कर में रहते हैं। कोई बोलते हैं कि मैं कमल से हूँ, मैं आऊँगा मंदिर बनवाऊँगा, वो बोलते हैं मैं आऊँगा मंदिर बनवाऊँगा।
यही बात अभी देवेश भी कर रहे थे। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग युवा हैं तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या होना क्या चाहिए?
ये सारी चीज़ें नेता लोग हट जाएं, एक तरफा ये लोग हो जाएं, मंदिर बन जाएगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है।
और जो लोग मांग कर रहे हैं कि मस्जिद बने उनका क्या होगा?
मस्जिद नहीं,
नहीं, बहुत से हमारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं जो चाहते हैं कि राम मंदिर बन जाए, क्योंकि राम हमारे हैं, हमारे थे और हमारे ही रहेंगे। तो इस तरह की अगर बातें करते हैं मुस्लिम धर्म के लोग तो वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं।
और ये हम देख रहे हैं, हमारे ठीक सामने एक लड़की है और ये बाइक से आ रही है, इसके पीछे, इनके पीछे एक छोटा सा बच्चा भी है। बाइक से आमतौर पे महानगरों में तो दिख जाती हैं लड़कियां, लेकिन अयोध्या जैसे छोटे से कस्बे में ये बाइक चलाते हुए दिख रही हैं। आंचल यादव हैं मेरे साथ और इनका घर बिल्कुल अयोध्या में उसी जगह पर है जहाँ ये कार्यक्रम हुआ था दीप महोत्सव का, राम पैड़ी में। किस क्लास में हो आंचल?
12th में जी। यहाँ पे होती है ये कि मस्जिद गिरा तो है, सब ये मानते हैं, लेकिन यहाँ पे सब हिंदू लोग चाहते हैं कि फिर राम मंदिर बने, और जो मुस्लिम होते हैं वे चाह रहे हैं फिर मस्जिद बने, और जब सरकार बोलती है तो ये बोलती है दोनों बने, तो दोनों कैसे बन जाएगा?
युवाओं के बीच में किस तरह की चर्चा होती है?
जी हाँ, ये होता तो है, लेकिन हाँ ये बोलते तो हैं कि मंदिर बन जाए, तो वो सोचते हैं कि मंदिर भी बन जाए और मस्जिद भी बन जाए तो ये कैसे हो सकता है, इसलिए मंदिर बन जाए, क्योंकि ये अयोध्या नगरी है, राम नगरी है, यहाँ मंदिर बनेगा तो और भी अच्छा रहेगा।
और नया घाट के बाद अब हम रुक करते हैं इधर अयोध्या जंक्शन के पास का इलाका है, यहाँ भी हमारे साथ कुछ युवक हैं, कुछ युवतियाँ हैं। ये लड़कियाँ पता नहीं बात करेंगी हमसे या नहीं, आप बात करेंगी? नहीं बात करेंगी। लेकिन हमारे साथ कुछ ये लड़के हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं।
एक हफ्ते के थे हम।
अच्छा, जब 1992 में आप एक हफ्ते के थे
जी।
अच्छा, जब ये मस्जिद गिरी है
जी।
क्या नाम है आपका?
मोहम्मद इफ्तिखार।
क्या कर रहे हैं?
एमए फाइनल हो गया है, यूजीसी नेट का पेपर दिए थे, आ गए हैं उसमें।
उस तरह के यूथ जो आपकी तरह हैं, जो मस्जिद के गिरने के बाद पैदा हुए हैं, वो लोग क्या बातें करते हैं उसके बारे में?
हम लोग जो जैसे नौजवान लोग हैं तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। हम लोग मतलब अपना है कि हम लोग मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे, इस पर हम लोगों का वो रहता है फोकस।
मेरा कहना ये है कि
नाम क्या है?
मोहम्मद आमिर अंसारी। हम लोग यहाँ पे जितने भी लड़के हैं, हमारे नौजवान सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। जितने हमारे हिंदू दोस्त हैं उससे एक चौथाई भी मुस्लिम दोस्त नहीं मेरे।
देखिए, इससे मस्जिद और मंदिर के नाम पर ऐसे यहाँ की जनता है, कोई भी फसाद करते हैं तो उससे उनके रोज़गार पर फ़र्क पड़ता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे गाड़ी वाले हो, चाहे मतलब कोई भी हो, कोई यात्री भी हो, यहाँ आने से वो घबराते हैं। और अयोध्या में ऐसी कोई यहाँ पे अमन और सुकून हमेशा रहते हैं।
कभी बहरहाल कभी ऐसा हुआ नहीं हम लोग के साथ कि कोई मंदिर के नाम पे या उसके नाम पे हम लोग को कुछ उल्टा सीधा कहे या कुछ कभी दबाव बनाए, ऐसा कुछ नहीं।
या उसका उस पे कोई डिस्कशन हो?
नहीं, कोई नहीं। अपवाह स्वरूप किसी से भी पूछेंगे यहाँ पे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, वो लड़का यही जवाब देगा।
अयोध्या में युवाओं से बात कर रहे थे सबीरात्पज मिश्र, और अब सीधे उनके पास चलते हैं जो इस समय विवादित स्थल के पास ही मौजूद हैं। समीरात्मज मिश्र, 25 साल हो गए हैं, क्या गहमा गहमी है बाबरी मस्जिद के पास?
जी अमरेश, यहाँ चूंकि जैसा आपने बताया 6 दिसंबर को ये घटना हुई थी, और आज कल शाम तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब सुरक्षा की दृष्टि से, चूंकि आज हिंदू संगठनों ने शौर्य दिवस मनाने की घोषणा की है, मुस्लिम संगठनों ने शोक दिवस मनाने की घोषणा की है, तमाम मस्जिदों में इसको लेकर के प्रार्थना होगी या जिस तरह से वो लोग मनाए, अभी कई तरह के कार्यक्रम उन्होंने रखे हुए हैं, तो इसको देखते हुए प्रशासन सतर्क है। आसपास की सुरक्षा को, वैसे भी रामलला की सुरक्षा काफी कड़ी सुरक्षा के बीच रहते ही है, वहां पे लोगों की हर व्यक्ति की जाने वाले की चेकिंग होती है, लेकिन पूरे शहर में अयोध्या जो कस्बा है यहाँ पे धारा 144 लगाई गई है एहतियात के तौर पर, और सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के इलाके भी हैं, और चूंकि यहाँ सारे आसपास के इलाकों में बहुत से मंदिर हैं, बड़े मशहूर मंदिर हैं, तो उन जगहों की भी सुरक्षा व्यवस्था को काफी चौकसी बरती जा रही है। बाकी यहाँ के लोगों में कोई ऐसा, अभी फिलहाल जो कि सुबह का समय है और रामलला का मंदिर भी जो है 7 बजे से खुलता है, तो बहुत कोई इसको लेकर कोई ऐसा, वैसे आप नहीं समझ सकते हैं कि हाँ कुछ है, कोई बहुत बड़ी घटना हुई थी 25 साल पहले यहाँ पे, उसको देकर के फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है।
समीर, आप वहाँ कई दिनों से मौजूद हैं, अभी हमने आपकी वो रिपोर्ट सुनी जिसमें युवा अपनी राय जाहिर कर रहे थे, वहाँ आपने तमाम ऐसे हिंदुओं और मुसलमानों से भी बात की होगी जो 1992 में जो हुई घटना हुई थी, बाबरी मस्जिद को का विध्वंस किया गया था, उसके साक्षी रहे होंगे, ऐसे तमाम लोगों से आपकी बात हुई होगी, उनका अब क्या सोचना है?
देखिए, सोच में तो बदलाव अब पहले भी, ये जाहिर सी बात है कि जो हिंदू और मुसलमान है दोनों की सोच बिल्कुल अलग है, लेकिन एक बात जो कॉमन है, जो दिखाई पड़ी है, कि सभी लोग ये चाहते हैं कि विवाद का हल होना चाहिए, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जिस सोच पे सब लोग काम कर रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, और ये कहना है कि भाई अगर कोई फैसला निकलता है वहां पर सुप्रीम कोर्ट निकाल दे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हिंदू संगठन हैं, जाहिर सी बात है उनकी अपनी सोच बिल्कुल एक तरफा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही बनना चाहिए, वही मुसलमान भी कहते हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, मस्जिद अगर गिराई गई है तो मस्जिद वहाँ पे दोबारा से बननी चाहिए, लेकिन अगर एक आम हिंदू और मुसलमान की बात करें तो वो चाहते हैं कि कोई इसका एक ऐसा हल निकले जो सबको मान्य हो।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीरात्मज मिश्र। अयोध्या में जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई तब फोटो पत्रकार प्रवीण जैन वहीं मौजूद थे। उनका कहना है कि मस्जिद ढहाने के लिए बाकायदा पूर्वाभ्यास किया गया था और उन्होंने उसे खुद देखा और कैमरे में कैद किया था। इसके बाद उन्होंने मस्जिद गिरते हुए खुद देखी भी थी। प्रवीण जैन बीबीसी स्टूडियो आए और उन्होंने विस्तार से बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी के साथ बातचीत में उस दिन के पूरे घटनाक्रम को याद किया।
एक्चुअली मैं 4 दिसंबर को ही अयोध्या पहुँच गया था। एक्चुअली सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी ये थी कि 5-6 दिसंबर को क्या होने जा, बाबरी मस्जिद रहेगी, ढहेगी, इतनी सिक्योरिटी है, और कुछ नहीं होगा। तो 4 दिसंबर को मैं विश्व हिंदू परिषद के एक नेता दिल्ली के बहुत बड़े बीएल शर्मा प्रेम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो उनसे मैं मुलाकात की तो उन्होंने बोला कि हाँ कुछ ना कुछ होने जा रहा है, मैं आपको सुबह सुबह लेके चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैं गया तो वहाँ पर देखा कि रिहर्सल हो रही है, जो 6 दिसंबर को जो होने वाला है रिहर्सल है।
और ये बाबरी मस्जिद जहाँ पर खड़ी थी उससे कितनी दूर था ये?
पास में ही था, जहाँ तक मेरे को याद है 0.5 किलोमीटर भी नहीं होगा। एक खुला ग्राउंड था, एक टीला बना हुआ था वहाँ पर, कुछ लोग थे जो कि प्रोफेशनल मेरे को लग रहे थे, उनके हाथों में हथौड़े बड़े बड़े जो कि बिल्डिंग तोड़ने के लिए होते हैं, सबकी वो रिहर्सल कर रहे थे और बड़े बड़े रस्से उनके पास थे। और एक वहाँ पर बाजू में एक टीला था तो टीले के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर लोहे की कुछ ग्रिल थी रस्से के में, तो टॉप जो था टीले का तो उसके अंदर उन्होंने फंदा ऐसे लगाया हुआ था और सेम मेथड उन्होंने यूज़ किया मॉस्क को गिराने में, 6th को
जो मस्जिद का गुंबद था उसको उसके चारों तरफ गिराने में
वही मेथड
इस्तेमाल किया।
और टीले को चारों तरफ उन्होंने वो ग्रिल से उसको बांधा और रस्से से ऊपर चढ़ के टीले के ऊपर टॉप के ऊपर पहुंचे।
तो आपके हाथ में कैमरा देख करके उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई?
उनको इसलिए परेशानी नहीं हुई क्योंकि मेरे साथ एक तो विश्व हिंदू परिषद के लीडर थे और दूसरा उन्होंने शो किया कि ये हमारे साथ है, हमारे आदमी है।
इतना भरोसा कैसे जीत लिया आपने बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम का?
क्या था दिल्ली में जब हम पेपर में थे तो पाइनियर में, इंडियन एक्सप्रेस में, हमको उनको देखते थे, वो विश्व हिंदू परिषद की प्रेस रिलीज वगैरह लेके आते थे,
तब से दोस्ती और
उसके साथ काफ़ी मधुराना संबंध थे हमारे।
तो आप वहाँ जहाँ पहुँचे,
हाँ,
तो जब ये रिहर्सल हो रही थी उसकी आपने तस्वीरें लेनी शुरू कर?
जी जी जी,
उसी वक्त सुबह यानी 5 तारीख की सुबह?
हाँ 5 तारीख की सुबह ली,
आज से आज 5 दिसंबर 2017 को हम बात कर रहे हैं।
जी जी,
25 साल पहले।
जी,
तो जब आपने तस्वीरें वहाँ ली, जो कार सेवक वहाँ मौजूद थे उनसे आपका किस तरह का इंटरेक्शन रहा?
उनसे मेरी कोई ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी फोटोग्राफ्स वगैरह खींचने थे। जहाँ तक मेरे को याद है कि ना शर्मा जी ने बोला कि थोड़ा जल्दी कर दो और उसके बाद हमको वापसी।
और अगले ही दिन दो ही दिन नहीं बल्कि अगले ही दिन 6 दिसंबर को फिर क्या हुआ?
5 दिसंबर को मैंने अपने साथियों को मैंने बतला दिया था कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है, रिहर्सल हुई है, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि कुछ होगा और मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि हो सकता है ढांचा रुक गया रहेगा, हो सकता है ऐसी रिहर्सल कर रहे होंगे, तो मेरे को भी उम्मीद इतनी नहीं थी। लेकिन रिहर्सल देख के आया तो मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो एनीवे 6 दिसंबर को हम पहुँचे और हम बिल्ला लगाए हुए थे, विश्व दूसरा बिल्ला जो कि प्रेस वालों को दिया गया था हर एक को 6 दिसंबर को। तो उसके बाद हमने फ़ोटो वोटो खींचनी शुरू की। 2 मंच थे, एक में जितने भी बीजेपी के टॉप लीडर बैठे हुए थे ऊपर, अडवाणी जी थे, जोशी जी थे, उमा जी थी और अशोक सिंघल, जितने भी लीडर जितने भी थे, रितंबरा वगैरह, ये सब बैठे हुए थे और हमारा ध्यान उस तरफ उनकी तरफ नहीं था। हमारा ध्यान था कि क्या होगा मॉस्को। हम आगे बढ़े तो सारे प्रेस वाले कोई टॉप पोजीशन के ऊपर, एक 3rd या 4th फ्लोर था, उसके ऊपर हमने पोजीशनें ली हुई थी, सब ने एकदम से तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, क्राउड ने। और सडनली हमने देखा कि है ना, जब हम पिक्चर वगैरह ले रहे थे तो लोग हमारी तरफ आए और कैमरे उठा उठा करके 3rd फ्लोर से ऊपर नीचे फेंकने शुरू कर दिए। मुश्किल से मैंने अपना कैमरा वगैरह जैकेट के ऊपर लपेटा और मैं जहाँ अडवाणी वगैरह सारे लोग, अडवाणी जी वगैरह सब बैठे हुए थे, और मैं मंच के ऊपर चढ़ गया वहाँ पर और इनको बोलने लगा कि सर हमारी पिटाई हो रही है, इनको रोकिए, अनाउंस कीजिए। और वहाँ पर तो कोई नहीं एकदम से देख रहा था हमारी तरफ और बल्कि वहाँ से नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, और जहाँ तक मेरे को याद है कि वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, और जानबूझ के बोल रहे थे और उसके बाद हंस रहे थे।
ये थे फोटो पत्रकार प्रवीण जैन जो बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने की घटना को याद कर रहे थे। और अब एक नज़र डाल लेते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर। संदीप राय स्टूडियो में हमारे साथ हैं। संदीप, बाबरी मस्जिद की घटना को आज अखबारों ने कैसे कवर किया है?
जी अमरीश,
आज लगभग सारे अखबारों ने बाबरी मस्जिद को उस तरीके से तो नहीं कवर किया है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कल सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी उसको लेकर के लोगों ने किया है। आज के लगभग सारे अखबारों ने अयोध्या की सुनवाई को टालने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के इनकार की खबर को प्रमुखता से छापा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद स्थल के मालिकाना हक संबंधी विवाद की सुनवाई 2019 के आम चुनाव के बाद करने की अपील की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि अयोध्या मसले की सुनवाई के समय पर कोर्ट में काफ़ी वाकयुद्ध हुआ। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने सुनवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने इसे इनकी बात को मानने से इनकार किया है और कहा है कि इस मामले पर अगली 8 फरवरी को सुनवाई होगी। इसके अलावा हम अन्य खबरों पर आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक और खबर है जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के खंडवा में कथित रूप से भड़काऊ पोस्टर लगाने के लिए 5 मुसलमान युवकों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। हालांकि बाद में ये आरोप हटा लिए गए। इनमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को ईद मिलद उन नबी के जुलूस में एक पोस्टर प्रदर्शित किया गया था और इसी के संदर्भ में गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार लोगों में 5 नाबालिग हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि विवादास्पद भारतीय उद्योगपति विजय माल्या पर लंदन में प्रत्यर्पण मुकदमा चल रहा है। सुनवाई के दूसरे दिन माल्या के वकील ने अदालत से कहा कि भारत के पास माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी के कोई सबूत नहीं है।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए संदीप राय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अगले साल दक्षिण कोरिया में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों में रूस हिस्सा नहीं ले सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा है कि एंटी डोपिंग सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ करने के सबूत मिलने पर रूस के खिलाफ प्रतिबंध की कार्रवाई की गई है। इसकी प्रतिक्रिया में रूस ने कहा है कि ओलंपिक समिति की यह कार्रवाई अपमानजनक है। पूरा ब्यौरा सुनिए संदीप राय से।
9 फरवरी को दक्षिण कोरिया में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने से रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने कहा है कि साफ रिकॉर्ड वाले एथलीट हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो रूस का झंडा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 17 महीने तक की गई जांच में IOC ने पाया कि रूसी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को डोपिंग में फंसने से बचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चला रखा था। IOC के अध्यक्ष थॉमस बाख ने इसे खेलों की पवित्रता पर अभूतपूर्व हमला बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि ये ओलंपिक खेलों की पवित्रता पर अभूतपूर्व हमला है। 2014 में सोची में हुए ओलंपिक विंटर गेम्स में धोखाधड़ी के लिए खास एंटी डोपिंग लेबोरेटरी बनाई गई थी। IOC कार्यकारी बोर्ड ने प्रक्रिया के तहत इस व्यवस्थित धोखाधड़ी के लिए प्रतिबंध लगाया है, जबकि साफ रिकॉर्ड वाले एथलीट खिलाड़ियों को इससे अलग रखा गया है। ये थे IOC के अध्यक्ष थॉमस बाख के शब्द। लेकिन रूस इसका लगातार खंडन करता रहा है। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब एक रूसी डॉक्टर ग्रिगोरी रोडशेंको ने सवाल उठाया। वो सोची विंटर ओलंपिक खेलों के दौरान रूस के एंटी डोपिंग प्रयोगशाला के निदेशक थे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस अपने खिलाड़ियों के डोपिंग के लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम चला रहा था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद एक ऐसी दवा बनाई थी जो एथलीट के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने में मदद करती है और जांच में इसका पता भी नहीं चलता। इसके बाद स्विट्जरलैंड के पूर्व राष्ट्रपति सैमुअल श्मिट के नेतृत्व में जांच बैठाई गई। IOC के फैसले पर श्मिट ने कहा, हमने एक सटीक और वस्तुगत निष्पक्ष विश्लेषण करने की कोशिश की थी और मैं कहूंगा कि यह विश्लेषण IOC के ताजा नतीजों से मेल खाता है। इसमें जो कुछ कहा गया वो बिल्कुल साफ है। ये थे श्मिट के शब्द। कई और एजेंसियों ने इस मामले की जांच की थी। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने पाया कि 2012 से 2015 के बीच 30 खेलों में करीब 1000 एथलीटों को इस डोपिंग प्रोग्राम से फायदा पहुंचाया गया है।
ब्यौरा सुना रहे थे संदीप राय। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में प्रचार में तेजी होनी चाहिए, लेकिन कल से चुनाव प्रचार थमा हुआ है और इसकी वजह है समुद्री तूफान ओखी। दक्षिण भारत में तबाही मचाने के बाद ये तूफान गुजरात की ओर बढ़ रहा है। तूफान के कारण कई नेताओं को अपनी चुनावी सभा रद्द करनी पड़ी है। हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने गुजरात में BBC संवाददाता रॉक्सी गागेटकर छारा से थोड़ी देर पहले बात की और ताज़ा जानकारी लेनी चाहिए।
जी देखिए, कल से यहाँ पर गुजरात में ओखी जो एक ये स्टॉर्म की बात थी उसकी वजह से चुनावी प्रचार बिल्कुल थम गया है। कल यहाँ पर अमित शाह की महुआ, राजुला और सीहोर में जो रैली थी वो कैंसिल कर दी गई है। कल सूरत में आदित्यनाथ की एक रैली थी वो भी कैंसिल कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है वसुंधरा राजे, मनोज तिवारी, उन लोगों की जो रैलियां थी वो भी कल कैंसिल कर दी गई थी। अगर कांग्रेस की बात करें तो कल राहुल गांधी ने कच्छ में एक रैली की थी, उसके बाद में मोरबी, धांगंद्रा और सुरेंद्रनगर जैसे जो सौराष्ट्र के रीजन है वहां की राहुल गांधी की सारी रैलियां कल कैंसिल की गई थी।
प्रशासन ने, तूफान है उसको लेकर कुछ चेतावनी भी जारी की है।
मुख्यमंत्री जो विजय रूपानी है उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे एक मीटिंग कंडक्ट किया है और उस मीटिंग में उन्होंने जो भी इसमें स्टेप्स लेने चाहिए प्रिकॉशनरी स्टेप्स उसको लेकर उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस दी है। सूरत और वलसाड़ जैसे एरिया में बहुत ज्यादा असर होने की शक्यता है, इसकी वजह से सूरत के ओलपाड़ और उनके आसपास के विस्तारों के लोगों को वहां से शिफ्ट भी किया गया है, वहां से इवैक्यूएशन हुआ है और वलसाड़ में भी एक लोगों को शिफ्ट करने की बात थी। तो और अलग अलग जगहों पर अहमदाबाद जैसे शहर में भी जो दरिया से इतना दूर है वहां पर अहमदाबाद में भी फायर ब्रिगेड की टीम को स्टैंडबाय पर रखा गया है।
पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है उसकी अंतिम तारीख नजदीक ही है, उसको देखते हुए क्या लग रहा है कितना असर पड़ेगा?
देखिए सूरत में प्रधानमंत्री की रैली कैंसिल हुई है, इससे काफी फर्क पड़ सकता है क्योंकि लास्ट टाइम जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तो बहुत ज्यादा लोगों को अपनी रैली में आकर्षित नहीं कर पाए थे। तो और इसी तरह से राहुल गांधी का जो सौराष्ट्र का दौरा है वो राहुल गांधी का सौराष्ट्र का दौरा भी पूरा नहीं हो पाया है। तो एक तरह से ये देखा जाएगा कि ये जो बड़े नेता थे उनकी जो लोगों के साथ बातचीत या लोगों के साथ जो उनका एक इंटरेक्शन था ये लास्ट दिन के लिए इन्होंने जो रखा था शायद वो नहीं होने की वजह से गुजरात की जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ओखी की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है ऐसा लग रहा है।
ये थे बीबीसी संवाददाता रॉक्सी कागेटकर छारा। यास्मीन मंसूरी एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। जिंदगी ने उन्हें बहुत गम दिए हैं लेकिन आज वो एक मिसाल बनकर उभरी हैं। रविवार को उन्हें एक समारोह में विकलांग श्रेणी में साल के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के सम्मान से नवाजा गया। वो एक अस्पताल में नर्स का काम करती हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में खुद भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित किया। उनसे बात की हमारी सहयोगी भूमिका राय ने और पूछा कि नई जिंदगी शुरू करने की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली।
मुझे ये इंस्पिरेशन खुद एक पेशेंट बन के मिला कि जब मैं हॉस्पिटल में लेटी होती थी सफदरजंग हॉस्पिटल में, मैं कहती हूँ अब कि दूसरा घर वो रहा है मेरा, कि या तो मेरा घर या फिर हॉस्पिटल, दो ही जगह थी मेरे लिए मेरी जिंदगी में कि इलाज कराते रहना। तो जब मैं वो सिस्टर्स को देखती थी वहाँ पे जो काम करती है नर्सेज, कितनी सेवा करती थी लोगों की, और दर्द जो सबसे ज़्यादा क्लोज जो होती है वो सिस्टर होती है एक पेशेंट के, तो मैंने सोचा कि आज जब मैं खुद एक मरीज बन गई मैं उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ एक मरीज का, सामने वाले का, तो मैंने सोचा मुझे भी नर्स ही बनना है अगर अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे। क्योंकि एक पोलाइट जो लफ्ज़ होता है और प्यार से बात करना एक मरीज के साथ वो उसकी 50% दवा होती है। अगर एक मरीज का दर्द को सुन लिया जाए और उसको सही से उसके जवाब दे दिया जाए तो मरीज आधा खुद ही ठीक हो जाता है। तो मेरा यही मोटिव रहेगा कि मैं कभी अपने दवाई से तो ऑफकोर्स ठीक होगा, अपने लफ्जों से किसी मरीज को बीमार ना करूं।
कितनी सर्जरी आपकी अब तक हो चुकी है?
मेरी 20 सर्जरीज अब तक हो चुकी है। अभी 2 महीने पहले भी मेरा एक आँख का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि मैं एक आँख से देख सकती हूँ एक से नहीं देख सकती, तो एक आँख के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती हूँ मैं भी और घर वाले भी। यानी 12-13 साल हो गए आंखों की जो ड्रॉप्स होती है आई ड्रॉप्स वो आज तक मैं डालती ही हूँ।
समाज, आस पड़ोस के लोग, घर परिवार, रिश्तेदार, इन सब ने आपका किस तरीके से साथ दिया या क्या क्या कुछ सुनने को मिला आपको इस दौरान?
साथ साथ लोग कम देते हैं और जो कमियां निकालने के लिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं। जैसे मेरे साथ एसिड का हुआ तो लोगों ने सोचा लड़की की ही गलती होगी, इन्हीं की प्रॉब्लम थी, इन्हीं की वजह से इनको हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर हाँ बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बोलते हैं अच्छा कर रही हो, वो आज अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग आज अप्रिशिएट कर रहे हैं जो कल तक हमें बुरा भला बोलते थे, वो आज जब अवार्ड मिल गया कल तो बहुत सारे लोगों के कॉल भी आ रहे हैं जो कभी बात नहीं करते थे। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि अरे इनके पास तो पैसा ही खत्म हो गया है, ये इनसे बातचीत करेंगे तो हमसे कहीं मदद ना मांग ले। बट यस, कुछ लोग हैं अच्छे, मेरे रिलेटिव्स भी अच्छे हैं, परिवार तो ऑफकोर्स है ही मेरा अच्छा।
ये थी तेजाब हमले की शिकार और अब सम्मानित कर्मचारी यास्मीन मंसूरी। तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की यह सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया दीपक जसरोटिया ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया अभिमन्यु साहा ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।